आहान को चाहत के पास से गए हुए काफी टाइम हो गया था। आहान ने चाहत को घर पर ही रहने के लिए कहा था, साथ ही उसकी देखरेख के लिए उसने मिस्टर रवि और उसकी वाइफ कविता को भी बोला था। आहान के जाने के बाद कविता ने चाहत को खाना दिया और फिर वहां से चली गई। चाहत ने खाना खाया और फिर पेनकिलर लेकर थोड़े टाइम के लिए सो गई। शाम के लगभग 4 बजे के करीब उसकी आँख खुली तो उसे थोड़ा बेहतर लग रहा था। चाहत ने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था और घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। फिर उसे अपनी मम्मा की याद आई तो चाहत ने धीरे से कहा, मम्मा मम्मा वो ठीक तो होगी ना, मैं तो एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई। आहान मना किया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनसे मिलने ना जाऊं? अगर उन्हें होश आ गया और उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो श्रद्धा क्या जवाब देगी? ऊपर से वो भी पूरी रात से वहां पर है, उसे भी रेस्ट की जरूरत होगी। मुझे मम्मा के पास जाना ही होगा। आहान के मना करने के बावजूद चाहत ने हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचा। हॉस्पिटल जाने के लिए चाहत अपने कपड़े निकाल रही थी। उसने देखा कि उसकी गर्दन, पैर और पेट पर काफी सारे निशान बने हुए थे जो अभी भी गए नहीं थे। चाहत ने कुछ पल खुद को लाचारी भरी निगाहों से आईने में देखा और फिर हाईनेक टी शर्ट निकाली जो लॉन्ग स्लीव्स की थी। चाहत को उसमें काफी गर्मी लग रही थी, लेकिन अपने निशान छुपाने के लिए चाहत को उससे बेहतर उसे कुछ नहीं लगा। चाहत ने अपने चेहरे पर बने लव बाइट्स के निशान को मेकअप से कवर किया और फिर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट ओढ़कर हॉस्पिटल जाने के लिए नीचे आई। उसे नीचे देखते ही कविता ने कहा, अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। मैं ठीक हूँ आंटी, थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। वो एक्चुअली मैं मम्मा से मिलने जा रही हूँ, चाहत ने बताया। कविता ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, तुम्हारी बात भी मुझे ठीक लग रही है, पर मिस्टर ओबेरॉय ने सख्त मना किया था कि तुम्हें बाहर ना जाने दे। तुम्हें देखकर लग रहा है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलने जाने के लिए रोकना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी दोस्त कब तक उन्हें अकेले वहां संभालेगी? बोलते हुए कविता ने चाहत की तरफ देखा। मेकअप करने की वजह से उसका चेहरा एक्स्ट्रा शाइन कर रहा था। हल्के फुल्के मेकअप के बाद भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या मैं अंकल की स्कूटी लेकर जा सकती हूँ? चाहत ने हिचकिचाते हुए पूछा। कविता ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। चाहत ने उसे थैंक यू कहा और फिर स्कूटी लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कविता ने पीछे से सिर हिलाकर कहा, हॉस्पिटल जा रही है या किसी डेट पर? पहले मैंने इसे कभी मेकअप के साथ नहीं देखा और अब हॉस्पिटल जाने के लिए इसे मेकअप किया है। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर ओबेरॉय हॉस्पिटल में है और ये उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है? ये आजकल की लड़कियां भी ना, सामने वाले को ठीक से जानती नहीं, बस पैसा देखकर उनके करीब जाने के बारे में सोचती रहती हैं। थोड़ी ही देर में कविता ने चाहत के लिए गलत धारणा बना ली थी। वैसे भी वो चाहत को थोड़ा कम ही पसंद करती थी। उसे चाहत का देर रात तक काम के लिए बाहर रहना पसंद नहीं था। वहीं चाहत मन ही मन अच्छे से जानती थी कि कविता उसे इतना गौर से क्यों देख रही थी या उसे मेकअप के साथ देखकर उसके बारे में क्या सोच रही होगी। चाहत फास्ट स्पीड में स्कूटी चलाते हुए हॉस्पिटल जा रही थी। चाहत के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसने अपने मन में कहा, जानती हूँ कविता आंटी आप क्या सोच रही हैं, पर मैं आप जैसे किसी भी लोगों को एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझती। मेरे लिए मेरी मम्मा से बढ़कर कोई नहीं है। उनके लिए मैं दुखी होने पर झूठा हंस भी सकती हूँ और आहान ओबेरॉय जैसे इंसान की जबरदस्ती भी झेल सकती हूँ। जानती हूँ ये सिलसिला अब यहीं नहीं रुकने वाला है। मुझे हर बार उसका गुस्सा, उसकी जबरदस्ती सहन करनी होगी। यहाँ बात मेरी मम्मा की जान बचाने की है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सोचते हुए चाहत की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। आज उसे खुद की लाचारी पर सबसे ज्यादा दया आ रही थी। हालांकि पैसे ना होने पर पहले भी वो इस बात को लेकर दुखी रहती थी और यही सोचती थी कि उसके पास उसके पापा या एक अच्छी फैमिली क्यों नहीं है। बाकी दिनों के बजाय आज चाहत को खुद पर ज्यादा तरस आ रहा था और साथ ही साथ खुद पर घिन भी महसूस हो रही थी। उसने पैसों के लिए खुद को आहान ओबेरॉय को बेच दिया था। आहान की बातें कड़वी जरूर थीं, लेकिन दिल ही दिल में चाहत भी जानती थी कि उसने सच कहा था। अपनी इसी कश्मकश में खोए हुए चाहत हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अंदर जाने से पहले उसने खुद के चेहरे पर फिर से मेकअप का टचअप किया और फिर मुस्कुराते हुए अंदर गई। वहीं चाहत को ठीक ठाक देखकर श्रद्धा को राहत महसूस हो रही थी। चाहत को देखते ही श्रद्धा उसके गले लग गई और बोली, थैंक गॉड तो बिल्कुल ठीक है, तू नहीं आई तो पता नहीं मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आने लगे थे। चाहत श्रद्धा से अलग होकर बोली, सॉरी मेरी वजह से तुझे इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, तुम ठीक से आराम करने घर भी नहीं जा पाई। अब तुम जा सकती हो, मैं मम्मा का ध्यान रख लूंगी। चाहत की बात सुनकर श्रद्धा ने नाराजगी जताते हुए अपनी आंखें छोटी की और उसके हाथ पर धीरे से मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मेरी मम्मा की डेथ बचपन में हो गई थी और पापा ने दूसरी शादी कर ली ताकि मुझे माँ का प्यार मिल सके। हम बचपन से फ्रेंड हैं और तू अच्छे से जानती है कि मेरी स्टेप मॉम कैसी है। ऐसे में निशा आंटी ने मुझे कभी मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दी, और तू अब ये बोलकर मुझे पराया कर रही है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं पर भी रहूं। श्रद्धा ने गुस्से में चाहत को काफी कुछ कह दिया। चाहत भी अच्छे से जानती थी कि श्रद्धा निशा से बहुत प्यार करती है। उसने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, सॉरी, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, आगे से ऐसी फालतू बात बिल्कुल नहीं करूंगी। पर फिर भी तुम्हें आराम की जरूरत है, नानी भी बेवजह यहाँ परेशान हो रही हैं। हो सके तो उन्हें भी अपने साथ घर ले जाना। लगता है तेरे हीरो ने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, मुझे उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक सा ही इंसान है। उसने मेरे और नानी के लिए प्राइवेट रूम अरेंज किया है, और निशा आंटी की देखभाल के लिए दो प्राइवेट नर्स। हमें उनके पास ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब देख लेती हैं। यहाँ हमारे खाने रहने का इंतजाम उसने अच्छे से कर दिया है। श्रद्धा ने चाहत को सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर पहले चाहत को आहान पर गुस्सा आ रहा था, और साथ ही उससे नफरत भी महसूस हो रही थी। लेकिन अब पूरी बात जानने के बाद चाहत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, और उसके दिल में आहान के लिए अच्छी बातें चल रही थी। चाहत को खोया हुआ देखकर श्रद्धा ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो मैडम, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ख्यालों में ही खो जाओ। चाहत ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, मम्मा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। श्रद्धा ने चाहत की बात पर हामी भरी और उसका हाथ पकड़कर उसे निशा के रूम में लेकर गई। वो रूम किसी 5-स्टार होटल रूम से कम नहीं था। कंफर्टेबल बेड, सामने लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन, फुली एयर कंडीशनर्ड होने के साथ साथ रूम का इंटीरियर और बाकी सब चीज भी इस हिसाब से की थी कि पेशेंट के आसपास पॉजिटिव माहौल बनाया जा सके। चाहत उस रूम को देखने के बाद काफी इम्प्रेस हुई, और साथ ही ये भी समझ गई थी कि इस कमरे का एक दिन का खर्चा भी लाखों में होता होगा।
वहाँ पास में एक नर्स बैठी हुई थी जो निशा का ख्याल रख रही थी। चाहत निशा के पास गई, वो बेहोश थी। उसे देखकर चाहत की आंखों से आंसू का कतरा बन गया। चाहत ने निशा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे लगा था कि आप मुझ पर गुस्सा कर रही होंगी कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आई, लेकिन आप तो होश में ही नहीं हैं। आप कभी शिकायत क्यों नहीं करती मम्मा कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाती? मुझे मेरी पुरानी वाली मम्मा वापस चाहिए, जो बचपन में मुझे डांटती थी जब मैं खेलते हुए देर रात को घर आती थी। चाहत, तुम खुद को संभालो। तुम खुद को ही नहीं संभाल पाओगी तो आंटी का ख्याल कैसे रखोगी? तुम्हें इस तरह टूटना नहीं है। हम हिम्मत से काम लेंगे और आंटी को अपनी पॉजिटिविटी से ठीक करेंगे। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि एक कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके आसपास का माहौल पॉजिटिव होना भी जरूरी है। श्रद्धा ने चाहत को प्यार से समझाया और फिर उसके आंसू पोंछे। श्रद्धा ने चाहत की बात पर मुस्कुराते हुए हामी भरी और वहीं निशा के पास बैठकर उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। पूरे दो दिन बाद वो निशा का चेहरा देख रही थी। आज भी उसे निशा के दुबले पतले चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ आहान अपना गुस्सा शांत करने के लिए चाहत के पास पहुंचा। हालांकि इस बार वो चाहत से सिर्फ बात करने वाला था। पिछली बार उसने गुस्से में जो गलती की थी वो उसे वापस दोहराना नहीं चाहता था। जैसे ही आहान चाहत के घर पर पहुंचा, उसे कविता से पता चला कि चाहत अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल गई हुई है। आहान ने उसके सामने कुछ नहीं कहा और अपनी गाड़ी में आ गया। वो गुस्से में ड्राइव करते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा रहा था। ये नहीं करना चाहिए था डॉल तुम्हें। जब मैंने किसी काम के लिए तुम्हें मना किया है तो तुम्हें उसे करने लिए मुझसे इजाजत लेनी होगी। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी मम्मा का पूरा ख्याल रखूंगा? तुम मेरे गुस्से को कम करने के लिए हो डॉल, ना कि उसे बढ़ाने के लिए। आहान चाहत के पास हॉस्पिटल जा रहा था और इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। उन सबसे अनजान चाहत अपनी मम्मा के पास बैठी उनके साथ अपनी अच्छी यादें शेयर कर रही थी। भले ही निशा अपने होश में नहीं थी, फिर भी चाहत अब उन्हें हर तरह से खुशी ही देना चाहती थी।